अध्याय प्रथम संस्कृतिकरण। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का विषय बहुत विस्तृत और जटिल है और उसको ठीक ठीक समझने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, कानून, राजनीति, शिक्षा, धर्म, जननांग की और समाज विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत से अध्येताओं के दीर्घकालीन सहयोग की आवश्यकता होगी। उसके लिए प्रादेशिक, भाषागत तथा अन्य विभिन्नताओं का लेखा जोखा करना पड़ेगा, किंतु मेरा उद्देश्य कहीं अधिक सीमित है। मैं यहाँ उन दो अवधारणाओं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर पहले की अपेक्षा कुछ अधिक व्यवस्थित ढंग से विचार करने का प्रयास करूँगा, जो मैंने भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के कुछ विशेषताओं की व्याख्या के लिए कुछ वर्ष पहले प्रस्तुत की थी। ये अवधारणाएं जिन दो प्रक्रियाओं का संकेत करती हैं, उनमें से संस्कृतिकरण भारतीय इतिहास में निरंतर चलती आ रही है और आज भी चल रही है। दूसरी ओर पश्चिमीकरण उन परिवर्तनों की ओर संकेत करता है जिनका भारतीय समाज में समावेश अंग्रेजी राज में हुआ और जो कुछ क्षेत्रों में अधिक वेग के साथ स्वाधीन भारत में भी हो रहे हैं। संस्कृतिकरण के से भिन्न पश्चिमीकरण भारतीय आबादी के किसी विशेष अंश तक सीमित नहीं है और उसका महत्व उससे प्रभावित होने वाली की संख्या और प्रभावित होने के प्रकार दोनों ही दृष्टियों से लगातार बढ़ रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति ने कुछ बातों में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और यह असंभव नहीं कि इस तेजी के लिए स्वाधीनता आवश्यक पूर्व स्थिति हो। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के बीच जटिल और दुरूह अंतर संबंध है। ऐसा क्षेत्र है जो अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही रूपों में विश्लेषण और चिंतन के लिए उर्वर है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाएं जब पहली बार प्रस्तुत हुई तो उन्होंने भारतीय क्षेत्र में काम करने वाले समाज विज्ञान और मानव विज्ञान के विद्वानों को आकर्षित किया। यह पाया गया कि संस्कृतिकरण ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो भारत के विभिन्न भागों के हिंदुओं के बीच व्यापक रूप में पाई जाती है। यह भी सूचना मिली कि वह भील और ओरांव जैसे कुछ जनजाति समूहों में भी सक्रिय है। देश के विभिन्न भागों में जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के साथ इन दोनों प्रक्रियाओं के संबंध को ठीक से समझने की आवश्यकता है। ये अवधारणाएं सामाजिक परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए अब भी उपयोगी हैं या नहीं, अथवा किस हद तक उपयोगी हैं और उनमें आगे स्पष्टीकरण, परिष्कार, विस्तार अथवा संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, ये सब बातें स्वयं पता लगाने का अवसर मुझे तब मिला जब रविन्द्रनाथ ठाकुर स्मारक भाषणमाला समिति ने मुझे 1963 में ठाकुर भाषणमाला के लिए आमंत्रित किया। मगर मैंने यह कार्य कुछ हिचक के साथ ही स्वीकार किया, क्योंकि मैंने यह भली भांति जानता हूँ कि भारत भर के हिंदुओं के बारे में सत्य होने का दावा करने वाली स्थापनाएं प्रस्तुत करने में कितनी कठिनाइयां और जोखिमें हैं। अब मैं समझ सका हूँ कि अपने पिछले अधिकांश कार्य मुझे कितनी सुविधाएं थी। विषय अधिक निश्चित थे और वे छोटे छोटे से संबंध में स्वयं मैंने अपने बहुत सी सामग्री एकत्र की थी, किंतु एक प्रकार से मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मैंने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन जैसा विषय चुना, क्योंकि उसने मुझे बलपूर्वक सूक्ष्मता से अपने खोल के बाहर निकाल दिया। भारत जैसे देश जहां प्रादेशिक एकरूपता बहुत है और जिसके निवासी सैकड़ों जातियों में विभाजित हैं, सूक्ष्म अध्ययन के सीमाएं स्पष्ट ही हैं। दूसरी ओर बृहत अध्ययन में भी वे सूक्ष्मताएं, शुद्धताएं, बारीकियां छूट जाने की संभावना रहती है, जो केवल सविवरण सूक्ष्म अध्ययन में ही प्राप्त हो सकती है। एक स्वतः सिद्ध सत्य को दोहराने की जोखिम उठाकर भी मैं कहूंगा कि भारतीय समाज वैज्ञानिक को स्वभाव और पद्धति दोनों में ही उभय निपुण होना पड़ता है, जिससे अवसर के उपयुक्त किसी भी प्रकार का अध्ययन कर सके। सूक्ष्म अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तो बृहद अध्ययन से परिप्रेक्ष्य और एक से दूसरे में संचरण अत्यंत आवश्यक होता है। संस्कृतिकरण पर विचार करने के पहले मैं संक्षेप में इस बात का परीक्षण करूंगा कि किस प्रकार वर्ड की प्रभावशाली अवधारणा ने परंपरा प्रधान अथवा अंग्रेज पूर्व युग में जाति के गतिशील पक्षों को सचमुच गौड़ बना दिया था। यह तथ्य कि वह अवधारणा भी जाति के कुछ पक्षों को समझने के लिए आज भी प्रासंगिक है, उसमें निहित भ्रांतियों और विकृतियों को बनाए रखने में ही सहायक होता है। संक्षेप में वर्ण में सन्निविष्ट जाति की मुख्य विशेषताएं ये हैं: एक भारत व्यापी सोपान संगठन मौजूद है जिसमें विभिन्न प्रदेशों में कोई विभिन्नताएं नहीं है। वर्ण केवल चार अथवा यदि हरिजनों को भी शामिल किया जाए तो शब्दशः अंत्यज है तो पांच है। सोपान स्पष्ट है और वह अटल है। निसंदेह जाति के इस अर्थ में एक भारत व्यापी घटना है कि हर स्थान पर ऐसे आनुवंशिक अंतर्गामी समूह पाए जाते हैं जिनका सोपान बना हुआ है और इनमें से प्रत्येक समूह का एक नया या दो धंधों से पारंपरिक संबंध होता है। हर जगह ब्राह्मण हैं, अछूत हैं और किसान, दस्तकार, व्यापारी तथा सेवक जातियां हैं। जातियों के बीच संबंध अनिवार्यतः अपवित्रता और पवित्रता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। संसार कर्म धर्म जैसे कुछ एक हिंदू धर्मशास्त्री प्रत्यय जाति प्रथा के बुने हुए हैं, पर यह ज्ञात नहीं कि इन अवधारणाओं का भान सर्वव्यापी है अथवा सोपान की केवल कुछ ही श्रेणियों तक सीमित है। यह उस क्षेत्र के संस्कृतिकरण की मात्रा पर निर्भर है, पर कुछ एक सार्वभौमिक विशेषताओं की उपस्थिति के कारण हमें महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केवल यही नहीं कि कुछ जातियां जैसे भड़भुजा, कहार, बारोट अथवा चारण देश के केवल कुछ ही भागों में पाई जाती हैं, या कि कुछ धंधों पर आधारित जातियों की स्थिति देश के हर भाग में अलग अलग है, बल्कि यह बात भी कि ध्यान देने की है कि जाति मुख्यतः एक प्रादेशिक व्यवस्था के रूप में ही मौजूद और कर्म कार्यशील है। वास्तव में भारत के समस्त ब्राह्मणों की तो बात ही क्या, एक प्रादेशिक भाषा बोलने वाले समस्त ब्राह्मणों का भी एक अंतर्गामी समूह नहीं होता, उसमें भी एक दर्जन या उससे भी अधिक अंतर्गामी समूह हो सकते हैं। इसी तरह एक छोटे प्रदेश के भीतर भी एक जाति साधारण केवल कुछ एक अन्य जातियों के साथ पारस्परिक व्यवहार रखती है, सबके साथ नहीं किंतु कुछ जातियां विस्तृत क्षेत्र में फैली पाई जाती हैं, और आम तौर पर इसका अर्थ यह है कि उनके विभिन्न अंशों सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं। इसके अतिरिक्त औसत किसान के लिए अन्य भाषाई क्षेत्रों में जातियों के नाम सर्वथा अपरिचित होते हैं, उनका अर्थ वर्ण के आतंककारी ढांचे में रखने पर ही समझ में आता है। आधुनिक भारत के प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में सैकड़ों जातियां और अंतर्गामी समूह हैं। चार या पांच वर्ण केवल मोटी मोटी अखिल भारतीय श्रेणियां सूचित करते हैं कि जिनमें असंख्य जातियों की कुछ अत्यंत सीमित उद्देश्य के लिए ही समुचित किया जा सकता है। वर्ण आदर्श के अनुसार हरिजन या अछूत जाति व्यवस्था के बाहर है और हरिजनों से संपर्क अन्य चार वर्णों के सदस्यों को अपवित्र करता है। पर यदि किसी प्रदेश की जातियों के बीच आर्थिक, सामाजिक ही नहीं कर्मकांडी संबंधों को भी देखा जाए तो हरिजन उस व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। वे कृषि में कुछ आवश्यक आर्थिक कार्य पूरा करते हैं, प्रायः गांव के सेवकों, हरकारों और मेहतारों का कार्य करते हैं और गांव के उत्सवों पर ढोल पीटते हैं तथा सामुदायिक भोज की पत्तले उठाते हैं। वर्ण आदर्श में किसी जाति श्रेणी के स्थान के बारे में कोई संदेह नहीं होता, किंतु पद क्रम में स्थान का निश्चित होना जाति मात्र की विशेषता नहीं है। वास्तव में जाति व्यवस्था के दोनों छोर पर उतने अचल नहीं है जितने बताए जाते हैं। कुछ ब्राह्मण समूहों को इतना नीचा माना जाता है कि हरिजन तक उनके हाथ का बना भोजन नहीं खाते। यह स्पष्ट है कि पारस्परिक स्थान के बारे में अस्पष्टता या संशय आकस्मिक या महत्वहीन नहीं बल्कि चालू प्रथा के रूप में जाति की आवश्यक विशेषता है। दो जातियों का एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करना कोई असाधारण आचरण नहीं बल्कि एक ऐसी गतिशील व्यवस्था की स्वाभाविक उपज है जिसमें आगे बढ़ने के प्रयास में कुछ धक्कम धक्का और संघर्ष होता ही रहता है। अंग्रेज पूर्व भारत में जाति के पद विषयक संवाद बीच बीच में राजा तक पहुंचते थे, जिसका निर्णय अंतिम माना जाता था। इस भांति वर्तमान वास्तविक सोपान में जाति की स्थान बदलने की संभावना रहती है, जबकि वर्ण आदर्श में प्रत्येक वर्ण का स्थान सदा के लिए निर्धारित है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि वर्ण आदर्श में निहित यथार्थ की विकृति के बावजूद वह अभी तक जीवित रह आया है। अंत में जाति का वर्ण आदर्श इस अर्थ में सचमुच एक सोपान है कि उसमें पुरोहित वर्ण सबसे ऊपर होता है और पद निर्धारण की कसौटी धार्मिक आधार से प्राप्त होती है। विभिन्न वर्णों का के क्रम का उद्देश्य स्पष्ट ही ब्राह्मण सर्वोपरिता के सिद्धांत का समर्थन है और वह कम केवल अंशतः ही देश के विभिन्न भागों में जातियों के पद की वास्तविकता के अनुरूप है, किंतु इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि किसी जाति को लौकिक शक्ति प्राप्त हो तो या तो वह उसके कर्मकांडी पद में प्रतिबिंबित हो जाती है या उसके फलस्वरूप आगे पीछे जाति का स्थान ऊंचा हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि जाति व्यवस्था का वर्ण आदर्श भारतीय इतिहास के वैदिक युग में क्रमशः विकसित हुआ और प्रारंभिक ब्राह्मण लेखकों ने उसे उस समय वर्तमान जाति व्यवस्था के स्थूल विवरण के रूप में स्वीकार कर लिया। इन लेखकों ने उन प्रथम तीन वर्णों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जो उपनयन संस्कार के कारण द्विज कहलाते थे। घुरिये के अनुसार वर्ण धर्म अथवा विभिन्न वर्णों की आचार संहिता का उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व बहुत अधिक विस्तार हुआ। इस काल में ब्राह्मण वर्ग की स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई और ब्राह्मणों की बढ़ती हुई श्रेष्ठता की तुलना में शूद्रों की औन्नति और भी तीव्रता से उभर कर आई। क्षत्रियों की पूरी तरह पराभव हो गया और वैश्य कम से कम आम लोग शूद्रों के अधिकाधिक समीप पहुंचते गए। तीनों निम्न वर्णों को आदेश हुआ कि वे ब्राह्मणों के उपदेशों के अनुसार रहें, जो उनके कर्तव्यों को भी निर्धारित करें और राजा के ऊपर तदनुकूल उनके आचरण को नियमित करने का भार पड़ा। ब्राह्मण विधिकारों ने जाति व्यवस्था के ऐसे आदर्श का प्रतिपादन किया जिसमें वे सर्वोपरि थे और जो उन्हें अन्य जातियों तथा राजा के कर्तव्यों की घोषणा करने का अधिकार देता था। स्वयं ब्राह्मणों द्वारा अपने लिए किए गए दावे और सोपान के विषय में उनके विचार तो समझ में आते हैं, पर यह बात समझ में नहीं आती कि बहुत से भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने उन्हें ऐतिहासिक सत्य के रूप में के नियमों का नाम भी सुना होगा अथवा सुना हो तो उनकी ओर कोई ध्यान दिया होगा। और यह बात भी समझ में नहीं आती कि गांव में रहने वाले वालों से कैसे इन नियमों का पालन कराया जाता होगा अथवा सुना हो तो उनकी ओर कोई ध्यान दिया होगा और यह बात भी समझ में नहीं आती कि गांव में रहने वालों से कैसे इन नियमों का पालन कराया जाता होगा, उनके उल्लंघन के लिए कैसे दंड दिया जाता होगा। आज भी भारत सरकार के समस्त साधनों और सुविधाओं के बावजूद इस बात का पक्का प्रबंध बड़ा कठिन सिद्ध हुआ है कि भारतीय संविधान जो अधिकतर हरिजनों को प्रदान करता है उन पर भारत के 5,60,000 गांवों में सचमुच अमल किया जा सके तो फिर प्राचीन अथवा मध्ययुगीन भारत में परिस्थिति क्या रही होगी, यह निष्कर्ष पाठक स्वयं ही निकाल सकते हैं। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि नागर और शिक्षित भारतीय वर्ण आदर्श को चालू व्यवस्था के रूप में जाति का सच्चा मित्र या चित्र मानते रहे हैं। मेरा अनुमान यह है कि वर्ण आदर्श अंग्रेजी काल में विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप अधिक लोकप्रिय हो गया, जैसे अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्यायालयों से 1864 तक ब्राह्मणों पंडितों की संबद्धता, प्रत्येक शहर में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वकीलों की उपस्थिति जो सब हिंदुओं पर ब्राह्मणीय कानून लागू करने की कोशिश करते थे, बड़ी मात्रा में धार्मिक साहित्य का संस्कृत में से अंग्रेजी में अनुवाद, हर जगह जाति सभाओं का उदय जो जीवन पद्धति के संस्कृतिकरण द्वारा अपनी अपनी जाति के सुधार के लिए यत्नशील थी, और प्रबल ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में वृद्धि जो देश के कुछ भागों में ब्राह्मणों को उनके अधिकार और प्रभाव के स्थान से हटाने का प्रयास करता था। स्पष्ट ही यह सूची अपूर्ण और आजमाइशी है और वर्ण आदर्श को लोकप्रियता की पूरी व्याख्या अध्ययन द्वारा ही संभव है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने पर ऐसे परिवर्तनों के बाद वह जाति परंपरा से स्थानीय समाज द्वारा सोपान में जो एक स्थान उसे मिला हुआ है उससे ऊंचा स्थान का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। कभी कभी कोई जाति ऐसे स्थान की मांग करने लगती है जो उसके सोपानीय पड़ोसी मानने को तैयार नहीं होते। याचित और स्वीकृत प्रतिष्ठा के बीच इस प्रकार का असामंजस्य न केवल मतामत के क्षेत्र में बल्कि संस्थागत व्यवहार के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी होना संभव है। इस भांति मैसूर में हरिजन जातियों, दस्तकारों, लुहारों, सुनारों आदि के हाथ का बना खाना और पीने का पानी नहीं स्वीकार करती, जो निश्चय ही अस्पृश्य जातियों में है और इसलिए हरिजनों से श्रेष्ठतर, और चाहे उनका विश्वकर्मा ब्राह्मण होने का दावा भले ही न माना जाए, इस तरह किसान, उक्कलिग और अन्य जैसे गडेरिये, कुरूब, मार्क ब्राह्मणों का जो निश्चित ही ब्राह्मणों में शुमार होते हैं बना हुआ है, खाना और पानी नहीं स्वीकार करते। मुझे उत्तर कुर्ग में एक लिंगायत से बातचीत की याद है जो कुर्गवासियों को जंगली लोग कादूजन कहता था, जबकि कुर्ग अपने सच्चे क्षत्रिय बल की आर्य होने का दावा करते हैं। सामान्यतः संस्कृतिकरण के साथ साथ और प्रायः उसके परिणाम स्वरूप संबंध जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है, पर गतिशीलता संस्कृतिकरण के बिना भी अथवा गतिशीलता के बिना संस्कृतिकरण भी संभव है, किंतु संस्कृतिकरण से संबद्ध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केवल पदमूलक परिवर्तन ही होते हैं, कोई संरचना मूलक परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एक जाति आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है, पर यह सब एक मूलतः अचल सोपान में घटित होता है, स्वयं व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, संस्कृतिकरण हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि जनजाति और अर्ध जनजाति समूहों में भी होता है। जैसे पश्चिमी भारत के भीलों में, मध्य भारत के गोंडों और उरांवों में, हिमालय पहाड़ियों में भी, इसके परिणाम स्वरूप जिस जनजाति में संस्कृतिकरण होता है वह एक जाति और इसलिए हिंदू होने का दावा करने लगती है। पारंपरिक व्यवस्था में हिंदू होने का एकमात्र उपाय किसी जाति में शामिल होना था और गतिशीलता की इकाई आमतौर पर व्यक्ति या परिवार नहीं, एक समूह हुआ करता था। अब मैं अनुभव करता हूँ कि अपनी कुर्ग संबंधी पुस्तक और संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण पर एक टिप्पणी, दोनों में मैंने संस्कृतिकरण के ब्राह्मण आदर्श पर अनावश्यक बल दे दिया था और अन्य क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदर्शों की अपेक्षा कर दी थी। वह ब्राह्मण आदर्श भी कन्नड़, तमिल और तेलुगु ब्राह्मणों से प्राप्त था, अन्य प्रदेशों की ब्राह्मण जातियों से नहीं। डी एफ पोकाक ने ब्राह्मण आदर्श के साथ साथ एक क्षत्रिय आदर्श के भी मौजूद होने की ओर इशारा किया है। जिस प्रकार ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय या राजा वैश्य और शूद्र वर्णों से उच्चतर हैं, वैसे ही हम हिंदू समाज में राजकीय आदर्श भी मान सकते हैं जो कुछ बातों में ब्राह्मण आदर्श के ऊपर निर्भर होते हुए भी उनका या उसका पूरक होता है। किसी काल या स्थान विशेष में राजकीय आदर्श के प्रतिनिधि किसी क्षेत्र की प्रभुता संपन्न राजनीतिक सत्ता होती है और उस क्षेत्र की स्थानीय प्रभुता संपन्न अब्राह्मण जाति या जातियां माध्यम का काम करती हैं। इस भांति लौकिक मामलों में विभिन्न कालों में मुगलों और अंग्रेजों ने वह मानक प्रस्तुत किया जिससे लौकिक प्रतिष्ठा नापी जाती है। यहाँ मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि न केवल राजकीय बल्कि अन्य आदेशों या आदर्शों के लिए भी स्थानीय प्रभु जाति माध्यम बनती है और प्रभु जाति की अवधारणा कुछ दृष्टियों से संस्कृतिकरण की अवधारणा को अनुपूरित करती है। मिल्टर सिंगर ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि संस्कृतिकरण के एक या दो नहीं बल्कि चार या कम से कम तीन आदर्श अवश्य मौजूद हैं। संस्कृतीय हिंदुत्व के स्थानीय रूप में चार वर्णों के नामों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उपयोग भले ही हो पर उनका सार स्थान के अनुसार बदलता रहता है और किसी विशेष स्थान के लिए उसकी प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। यह भी पता चला है कि इन विभिन्न वर्णों की अपेक्षित प्रतिष्ठा और पद भी समय और समूहों के अनुसार बदलता है। बहुत बार जैसे राजाओं और योद्धाओं में जीवन शैली का पद ब्राह्मण के बराबर या कभी कभी उससे भी ऊंचा होता है, जो ऐसे समूह अपनी स्थिति को उठाना चाहते हैं, वे राजपूत जीवन शैली के कुछ लक्षण अपनाकर अर्थात अपनी जीवन पद्धति के राजपूतीकरण द्वारा ऐसा करते हैं। जिन क्षेत्रों में व्यापारी और किसान समूह की प्रभुता होती है वहां उनकी जीवन शैली को भी आदर्श मान लिया जाता है। पहले तीन वर्णों को द्विज कहते हैं क्योंकि उपनयन संस्कार के समय जिसे दूसरा जन्म माना जाता है केवल उन्हें ही यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। केवल प्रथम तीन वर्णों के लोगों को वैदिक कर्मकांड में सम्मिलित होने का अधिकार है, जिनमें अथर्ववेद को छोड़कर बाकी किसी न किसी वेदों से मंत्र का पाठ किया जाता है। द्विज ब्राह्मणों वर्णों में ब्राह्मण इन संस्कारों को पूरा करने के बारे में सबसे अधिक आग्रही होते हैं, इसलिए दूसरों की अपेक्षा उन्हें संस्कृतिकरण के श्रेष्ठतर आदर्श माना जा सकता है। किंतु प्रत्येक वर्ण का सांस्कृतिक सार विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न समय पर अलग अलग होता है और यह अनेक रूपता साधारण वर्ण सोपान के उच्चतम स्तर की ओर अपेक्षा निम्न स्तरों पर कहीं अधिक होता है। अब ब्राह्मण वर्ण की विभिन्नताओं पर संक्षेप में प्रारंभ करें। सबसे पहले तो एक ही प्रदेश में रहने वाली सभी उच्चतम से लगातार निम्नतम जातियों में स्थानीय संस्कृति के कुछ तत्व समान रूप से मिलेंगे। इस भांति एक क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण और हरिजन दोनों एक ही भाषा बोलेंगे, समान त्योहार मनाएंगे और कुछ सामान्य स्थानीय देवताओं और मान्यताओं को स्वीकार करते होंगे। मैं इसे उदग्र एकीकरण कहता हूँ और यह क्षैतिज एकीकरण से भिन्न है जो एक ही जाति या वर्ण के लोगों में पाया जाता है। कुछ ब्राह्मण समूह जैसे कश्मीरी, बंगाली और सारस्वत मांसाहारी हैं, जबकि अन्य स्थानों में ब्राह्मण परंपरा से शाकाहारी होते हैं। कुछ ब्राह्मण समूहों की जीवन शैली में दूसरे की अपेक्षा अधिक संस्कृतिकरण होता है और यह वैदिक तथा लौकिक ब्राह्मणों के बीच अंतर से बिल्कुल भिन्न है। विभिन्न ब्राह्मण समूहों में धंधों की भी पर्याप्त अनेक रूपता पाई जाती है। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में ब्राह्मणों की लौकिक स्थिति नीची है और गुजरात, तपोधन, बंगाल और मैसूर में बहुत से ब्राह्मण समूहों को कर्मकांडी दृष्टि से नीचा माना जाता है। कुल मिलाकर यह कहना होगा कि ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की संस्कृति में स्थानीय अंचल के तत्व कहीं अधिक होंगे और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देश के विभिन्न भागों में क्षत्रिय और वैश्य होने का दावा करने वाली जातियों में परस्पर गहरी विभिन्नताएं मौजूद हैं। वास्तव में जबकि भारत के प्रत्येक अंचल में इस बारे में तो कुछ सहमति मिलती है कि कौन ब्राह्मण है और कौन अछूत, क्षत्रियों और वैश्यों के बारे में ऐसी सर्व सहमति नहीं मिलती। क्षत्रिय और वैश्य के दर्जे का दावा वे सब समूह करते हैं जिनकी क्रमशः सैनिक कार्य और व्यवसाय की परंपराएं रही हैं। देश के विभिन्न भागों के सभी क्षत्रियों और सभी वैश्यों में अपना अपना सामान्य कर्मकांड नहीं है, उनमें से बहुतेरों के वे सब संस्कार नहीं होते जो द्विज वर्णों के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इतिहासकार के एम पड़िक्कर की मान्यता है कि इतिहास के पिछले 2000 वर्षों में क्षत्रिय जैसी कोई जाति नहीं हुई। नंदवंशी ही अंतिम सच्चे क्षत्रिय थे और वे ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गए। तब से प्रत्येक ज्ञात राज परिवार किसी न किसी अक्षत्रिय जाति से आया है, जिसमें मध्ययुगीन भारत के प्रसिद्ध राजवंश भी शामिल हैं। पड़िक्कर का यह भी कहना है कि ऐसा लगता है कि अधिक अर्वाचीन युगों में भी शूद्रों ने बड़ी भारी संख्या में राज परिवार पैदा किए हैं। बंगाल के पाल तो निस्संदेह ऐसी ही जाति के थे। महान मराठा राजवंश का कार्य आज जो भी हो, वह राजपूत वंश के उद्भूत होने के अपने वंशावलीय अभिमान को सिद्ध नहीं कर सकता। चारणों और जाटों भाटों का एक सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि उपयुक्त वंशावली संबंधी कड़ियों और कल्पकथाएं प्रस्तुत करके निचली जातियों की क्षत्रिय बनने को वैध सिद्ध करें। वर्ण आदर्श और वर्तमान स्थानीय सोपान के बीच सहमति का अभाव शूद्रों के विषय में और भी स्पष्ट है। न केवल यह श्रेणी स्थानीय क्षत्रिय और वैश्य जातियों की भर्ती के लिए उर्वर क्षेत्र रही है, जैसा कि पड़िक्कर ने कहा है, बल्कि उसका सांस्कृतिक और संरचनात्मक विस्तार इतना बड़ा है कि स्वयं श्रेणी ही लगभग निरर्थक हो जाती है। उसमें यदि एक छोर पर प्रभुता संपन्न भूस्वामी किसान जातियां हैं, जिनका स्थानीय वैश्यों और ब्राह्मणों के ऊपर शासन और अधिकार है, तो दूसरी छोर पर गरीब प्रायः अछूत समूह हैं और अपवित्रता रेखा के ठीक ऊपर जीवित है। इसी श्रेणी में बहुत सी दस्तकार और सेवक जातियां भी हैं, जैसे सुनार, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, तेली, वसोर, जुलाहे, नाई, धोबी, कहार, भड़भूजे, ताड़ी चुआने वाले, गैरिये, शुकरपाल आदि। इस प्रकार यह संभव है कि शूद्रों की व्यापक श्रेणी में कुछ जातियों की जीवन शैली का अत्यधिक संस्कृतिकरण हुआ है और कुछ का केवल अल्पतम पर संस्कृतिकरण हुआ हो अथवा न हुआ हो, और किसान प्रभु जातियां ही अनुकरण के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करती हैं, और जैसा पोकाक और सिंगर ने कहा है, वे ही क्षत्रिय और अन्य आदर्शों का माध्यम बनती हैं।